arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि।
गुप्त साम्राज्य का विवरण एवं उत्पत्ति।
इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ के अनुसार भारतीय इतिहास के हिंदू युग में महान गुप्त सम्राटों का काल किसी भी अन्य काल की अपेक्षा अधिक सुंदर तथा संतोषजनक चित्र प्रस्तुत करता है। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। इस काल में देश ने सर्वांगीण उन्नति की। गुप्त वंश में प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी, कला और साहित्य मर्मज्ञ सैनिक सम्राट हुए, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारतीय राजनीति के आकाश में छाए कोहरे को समाप्त किया। इन्होंने जागृति, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक उन्नति, नवीन कला एवं प्रभावशाली प्रशासन तंत्र के द्वारा राष्ट्रीय एकता को प्रतिष्ठित करके भारत वर्ष के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वंश के महान शासकों ने देश को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराया एवं देश में आंतरिक शांति एवं व्यवस्था को सुस्थापित किया। इस प्रकार पाटलिपुत्र का वैभव पुनः लौट आया। आइए अब जानते हैं गुप्तकालीन इतिहास जानने के साधनों को। पहला, पुरातत्वीय प्रमाण। पुरातत्वीय प्रमाणों से हमें गुप्तकालीन इतिहास जानने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अभिलेख। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभलेख के द्वारा उसके राज्याभिषेक, दिग्विजय तथा उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त हरिषेण का इलाहाबाद स्तंभलेख, उदयगिरी के गुफालेख एवं महरौली का स्तंभलेख उल्लेखनीय है। सिक्के या मोहरें। वैशाली के निकट विपुल मात्रा में गुप्तकालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। गुप्तकालीन सिक्के स्वर्ण, रजत और तांबे के हैं। सिक्कों पर तिथियां एवं चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की सूचना भी हमें सिक्कों के द्वारा ही मिलती है। स्मारक। गुप्तकाल के अनेक मंदिर, स्तंभ, मूर्तियां एवं चैत्य गृह यानी गुफा मंदिर प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख देवगढ़ का मंदिर, भीतरी गांव के मंदिर, तिगवा यानी जबलपुर का विष्णु मंदिर आदि हैं। अजंता गुफा, सांची, मथुरा एवं सारनाथ में प्राप्त मूर्तियों से इस युग की जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरा देखते हैं साहित्यिक प्रमाण। गुप्तकाल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला दूसरा महत्वपूर्ण साधन है साहित्य, जिनमें आते हैं पुराण और अन्य रचनाएं। पुराण। साहित्य के अंतर्गत पुराण इस काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें वायु पुराण, विष्णु पुराण और भगवान पुराण महत्वपूर्ण हैं। अन्य रचनाएं। अन्य ग्रंथों में कालिदास रचित शकुंतला, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश प्रमुख हैं। विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, बाण भट्ट का हर्षचरित, प्रवर सेन का कौमुदी महोत्सव गुप्तकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तीसरा, विदेशी यात्रियों के विवरण। इस काल में चीनी विदेशी यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी में भारत आया। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का विवरण लिखा है। इनके अतिरिक्त 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग और इत्सिंग भी भारत आए, जिनके विवरण से गुप्तकाल पर उल्लेखनीय प्रकाश पड़ता है। आइए अब जानते हैं गुप्त वंश की उत्पत्ति को। इतिहासकार डॉक्टर मजुमदार के अनुसार गुप्त कौन थे, यह प्रश्न अभी भी समस्यामूलक है। गुप्तकाल की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। गुप्त शब्द के आधार पर लोग इनको वैश्य कहते हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें ब्राह्मण एवं कुछ क्षत्रिय मानते हैं। गुप्त सम्राटों के लेखों में कई स्थानों पर इस वंश की वंशावली प्राप्त हुई है। इस वंश की नींव डालने वाला शासक श्रीगुप्त को बताया गया है, जिसने राजा और महाराजा की उपाधियां धारण की थी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच हुआ। इन दोनों राजाओं ने 275 से 319 या 20 ईस्वी के लगभग तक राज्य किया। गुप्त शासकों का कब और कैसे उद्भव हुआ यह कहना कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवी वंश के शासकों ने पाटलिपुत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और ये कुषाण साम्राज्य में वार्षिक कर देने वाले अधीन राजा थे। एल के मुखर्जी का मत है कि गुप्त वंश के राजा पाटलिपुत्र के निकट स्थानीय राजकुल के थे। इस वंश के प्रथम दो राजा श्रीगुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच थे। वे संभवतः सामंतवादी सरदार थे। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त था।
अरपा रेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।